नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो। वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु निजोऽपि यत् प्रसादा भक्तिशास्त्र प्रवर्तक।
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस जगन्नाथ मिश्रा उत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। कल शाम को हम सब भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला श्रवण की। किस प्रकार से कलयुग के प्रारंभ में भीषण स्थिति आ चुकी थी। जीव का उद्धार करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए और अपनी प्रेम भक्ति का दान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस कलयुग में अवतरित हुए और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सची माता के गर्भ में आए तो हम लोगों ने श्रवण किया कि संसार के समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। भक्तों, भगवान जब इस संसार में अवतरित होते हैं तब समस्त देवतागण उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ये भगवान के जन्म का लक्षण है। आप द्वापर युग में चलो तो वहां भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे तब भी समस्त देवी देवतागण ब्रह्मा समेत शिव जी आए थे। और त्रेता युग में चलो तो भगवान श्री रामचंद्र जब जन्म लेने वाले थे वहां भी समस्त देवी देवतागण उपस्थित हुए। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो देवतागण उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं। आज भी इस संसार में अपने आप को कई लोग भगवान मानते हैं। मनुष्य देह जीव तत्व होने पर भी अपने आप को भगवान कहते हैं। ऐसे अपने आप को भगवान मानने वाले को बताना चाहिए कि आप जब जन्म लेने वाले थे तब क्या देवी देवतागण आए थे स्तुति करने के लिए? देवी देवता की बात छोड़ दीजिए, कोई कुत्ता भी आया था भौंकने के लिए? अपने आप को भगवान मानते हैं। अब देखो भगवान जब अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण करके भगवान जन्म लेते हैं। राजकल के अपने आप को भगवान मानने वाले को पूछना चाहिए कि आपका जब जन्म हुआ तो एक चिथड़ा लेकर चड्डी पहनकर भी आए थे? आजकल बहुत लोग अपने आप को बाबा बापू सब भगवान मानने लगे हैं। वास्तव में भगवान एकमात्र कृष्ण है और सब जीव है या ज्यादा से ज्यादा देवता हो सकते हैं। भगवान तो एकमात्र वेद व्यास जी समस्त वेद पुराण और शास्त्र का अंत करते हुए कहते हैं वैसे तो मैंने बहुत पुराण लिखे। शिव पुराण में शिव जी भगवान है, वही सर्जन करते हैं, वही प्रलय करते हैं, वही सब मेंटेन करते हैं। गणपति पुराण में गणपति ही सब कुछ है, देवी पुराण में देवी ही सब कुछ है। परंतु वेदव्यास जी ने अंतिम पुराण भागवत लिखा और भागवत में वेदव्यास जी ने अंतिम कंक्लूजन दे दिया कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने भी हैं शिव ब्रह्मा इत्यादि वह सब भगवान की कला अवतार है, परंतु भगवान एकमात्र कृष्ण ही है, कृष्णस्तु भगवान। इतना इतना कहने के बाद भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं वेदव्यास जी ने शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ही सब कुछ है। तो परंतु सिद्धांत समझना चाहिए। एक कॉमन सेंस है, आप देखिए संस्कृत में एक नियम है कि पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। अर्थात किसी भी श्लोक में, किसी भी ग्रंथ में, या हम भी व्यवहार में जब बात करते हैं तो उसमें पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। पूर्व माने पहले की गई बात और उत्तर माने अंत में की गई बात। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि ये लड़का बहुत खराब है, उसके साथ कभी भी मत बैठना, उसके साथ कभी बात मत करना, उसके साथ कभी व्यवहार मत करना, उसका नेचर बहुत खराब है, उसमें कोई गुण है ही नहीं, बहुत खराब है, बहुत खराब है। परंतु अंतिम में मैं कहूं कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, पहले बहुत कुछ आधा घंटा तक मैंने कहा कि ये खराब है, इसके साथ मत बैठना, ये ऐसा है वैसा है, परंतु अंतिम एक लाइन में मैं कह दूं कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, वास्तव में वही अच्छा लड़का है। बुद्धिमान व्यक्ति इसका सार, इसका एसेंस क्या निकालेगा कि वो खराब है? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि भले आगे कुछ भी कहा है परंतु अंत में जो कहा है वही सार है, वे बुरा नहीं वे अच्छा है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि वेदव्यास ने वैसे तो बहुत ग्रंथ लिखे और कई लोगों को भगवान स्वीकार किया, परंतु अंत में उत्तर पक्ष में क्या लिखा है? कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। आगे भले बहुत कुछ कहा परंतु अंत में जो कहा जाता है वही मुख्य होता है। तो कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और उनके जन्म और कर्म दिव्य है। यदि उसे समझना है तो भक्ति से, भगवान गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावेतम। हे अर्जुन, मुझे सब लोग नहीं समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि योग माया से मैं ढका हुआ हूं। मूढ़ो यम ना भी जानाती, जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख हैं, वे मुझे नहीं जान सकते क्योंकि वे लोग माया में फंसे हुए हैं। यदि मुझे जानना है तो उसी गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाती। एक और कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं हूं, परंतु यदि जानना है तो भक्त्या माम, भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हैं। कहते हैं ना संसार में लोग, आप लोग हरे कृष्ण करते हो, कभी देखा है कृष्ण को? देखे बिना हरे कृष्ण करते रहते हैं तो क्या जो दिखाई देता है उसे ही मानते हो? ये हवाई दिखा, हवा दिखाई देती है फिर भी हम मानते हैं कि हवा है, मानते हैं? जरूरी नहीं है जो नहीं दिखाई देते हैं वह नहीं है। भगवान को आज और अभी भी आप देख सकते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोषु। इस संसार में आप देखिए, इस लकड़ी में अग्नि है, समस्त लकड़ी में अग्नि है, बाहर से लानी नहीं पड़ती है, लकड़ी में ऑलरेडी अग्नि है, परंतु उस अग्नि को प्रकट करने के लिए दियासली लगानी पड़ती है। ब्रह्मा जी अष्टम स्कंद में बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। जिसे गाय में दूध है, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये लीजिए गाय, इससे इसमें दूध है, आप निकाल लीजिए, तो वह मूर्ख व्यक्ति गाय को काट दे और देखे इसमें तो दूध नहीं है। अरे गाय में दूध है, परंतु उसे उस दूध को निकालने के लिए कुछ विधि है, कुछ करना होगा। ठीक उसी प्रकार इस भूमि में अन्न है, इस भूमि में आलू है और बहुत सारा अन्न है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि इस भूमि में आलू है, वो मूर्ख व्यक्ति इस भूमि को खोदने लगे और खोद करके 50 फुट का खड्डा कर दे और कहे कि इसमें तो कुछ नहीं मिला। वास्तव में आलू निकल सकता है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है। बीज बोया जाएगा, सिंचन किया जाएगा, तब जाकर मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे पास है, हमारे साथ है, सभी जगह पर है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, कुछ करना होता है। जैसे गाय से दूध प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, भूमि से अन्न प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, लकड़े से अग्नि प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है, और वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर नित्य निरंतर भगवान को देखते रहते हैं। तो भगवान को आज भी देखा और समझा जा सकता है, परंतु भक्तिया माम, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा से, तर्क से नहीं। तर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का कल आविर्भाव हुआ और हमने सुना कि किस प्रकार, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं, परंतु महाप्रभु का प्रभाव देखिए, वे अवतरित होने से पहले ही सबके मुख से हरि ध्वनि, भगवान का नाम निकालने लगे। वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में लिखते हैं, हे न मते प्रभु र हैल अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। जिस प्रकार महाप्रभु ने जन्म के समय ही सबके मुख से भगवान का नाम बुलवाया, उसी प्रकार जन्म के बाद भी सबके मुख से भगवान का नाम बुलवाते रहेंगे। सची जगन्नाथ देखी पुत्र पुत्रे ऋषि मुख, दुई जन हई लेना आनंद स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, सची देवी और जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बहुत सुखी हुए। ब्राह्मणों को बुलाए दूसरे दिन, अगले दिन महाप्रभु का जन्म हुआ और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र ने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, बहुत बड़ा उत्सव किया। आज भी संसार में देखा जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति, साधारण पिता भी, पिता के घर पे किसी पुत्र का जन्म होता है तो बहुत खुशी होता है, खुश होता है। जगन्नाथ मिश्र के 8-8 पुत्री का निधन हो गया, तब जाकर एक पुत्र हुआ, और यह जब दूसरा पुत्र हुआ तो बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया, जिसे जगन्नाथ मिश्रा उत्सव कहते हैं, जो आज है। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, अतिथियों को बुलाया, भोजन कराया और कई सारे ज्योतिष देखने वाले भी आए। ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं, तो कई ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, ये बालक पूरे विश्व को तारेगा। और इसी समय जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची देवी के जो दादा थे, महाप्रभु के नाना, जिसका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती ने इस बालक का बहुत सुंदर नाम रखा, नामकरण विधि की। कहा कि यह बालक आगे चलकर पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, इसलिए इस बालक का नाम आज से मैं विश्वंभर रख रहा हूं। विश्वंभर जो विश्व का भरण पोषण करेगा। वास्तव में भगवान ही विश्व का भरण पोषण करते हैं, हम क्या करते हैं। इस संसार का पुरुष, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ही मेरी पत्नी का पालन पोषण करता हूं, मैं ही सबको खिलाता हूं पिलाता हूं। परंतु वास्तव में सबको भोजन देने वाले, सबको खिलाने पिलाने वाले एकमात्र भगवान है, क्योंकि उसका नाम विश्वंभर है। भगवान सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वंभर हुआ। और भी इस बालक के बहुत सारे नाम रखे गए, क्योंकि इस बालक का जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। आज भी आप देखोगे मायापुर जाओ तो योग पीठ में नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ। तो नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम ही निमाय रखा गया। और कुछ स्त्रियों ने सोचा कि सची देवी के संतानों के ऊपर बहुत लोगों की नजर होती है, नजर न लग जाए, इसलिए कड़वे नीम से ही इसका नाम रखते हैं ताकि इसको किसी की नजर न लगे, इसलिए इनका नाम निमाय रखा गया। और जन्म से गौर वर्ण थे, गौर वर्ण के थे, इसलिए कुछ लोग उसे गौरांग भी कहते थे। तो गौरांग, निमाय और विश्वंभर, ये इनका नाम हुआ। और आगे चलकर जब ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करेंगे तब वे इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखेंगे, और फिर होंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से महाप्रभु के बहुत बहुत नाम है, नामकरण विधि की गई। जन्म से ही महाप्रभु ने अपना जो आंदोलन था, संकीर्तन आंदोलन, वे प्रारंभ कर दिया है। किस प्रकार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर दोनों वर्णन करते हैं कि महाप्रभु जब छोटे थे तो उनको जब इच्छा होती कि सब लोगों को कीर्तन कराऊं तो वे रोने लगते थे, बहुत रोते बहुत रोते। सब लोग प्रयास करते उसे हंसाने का, परंतु वे रोते ही रहते। कुछ लोग खिलौना प्रदान करते, कुछ लोग भोजन देते, सची माता दूध पिलाती, हाथ में लेकर उसको खिलाते, परंतु उसका रोना बंद नहीं होता था। वास्तव में जिसकी माया पूरे ब्रह्मांड को रुलाती है, वे भगवान अपनी लीला से वहां पर रो रहे हैं। यद्यपि भगवान को रोने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कल कहा था, कृषि भू वाचक नच निवृत्ति वाचक, जिससे नित्य निरंतर आनंद निकलता रहे, उस प्रभु को कभी रोने की जरूरत नहीं है। परंतु भगवान की लीला भी असीम है, उसे कोई समझ नहीं सकता है। भगवान रोते थे और उसे शांत रखने के लिए बहुत लोग अड़ोस पड़ोस से आते थे, परंतु वे शांत नहीं होते थे। तब जगन्नाथ मिश्र कहते थे, काम करो, अब ये शांत रहने वाला नहीं है, आप भगवान का नाम लो, भगवान की कृपा से ये शांत रह जाएगा। तब सारी माताएं और बाजू में रहने वाली स्त्रियां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब लोग महामंत्र कीर्तन करने लगती थी, महाप्रभु तुरंत शांत हो जाते थे, चुप हो जाते थे और हंसने लगते थे। तो इस प्रकार दूसरी बार महाप्रभु जी रोते तो दूसरी बार सब लोग कीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार से एक नियम बन गया कि निमाय जब रोएगा तब उसे खिलौना बिलौना कुछ नहीं, केवल कीर्तन करने लगो वो शांत हो जाएगा और वे प्रसन्न हंसने लगते थे। आज भी यदि कोई चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु बड़े 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 भोग और ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनका नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए और संकीर्तन कीजिए, महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक जगह तो लिखा है कि हम जब सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे बाजू में आकर बैठ जाते हैं। हम जब बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे बाजू में आकर खड़े रह जाते हैं, और हम जब खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान नाचने लगते हैं, इतना आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रोकर संसार में सबको अपना नाम हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार से धीरे धीरे महाप्रभु बढ़ने लगे और बड़े होते होते बालक चार पैर पर चलता है पांव और हाथ से घुटन के बल पर, तो महाप्रभु घुटन के बल पर चलना सीख गए। एक दिन की बात, जगन्नाथ मिश्र कुछ काम से बाहर गए थे और माता सची इस निमाई के लिए कुछ भोजन बना रही थी रसोई घर में, और यह निमाई रसोई घर से बाहर घुटन के बल पर चलते चलते निकला और निकलते हुए प्रांगण में आया। वृंदावन दास ठाकुर उस दिन का वर्णन करते हैं कि एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाई। निमाई जब प्रांगण में आया, माता रसोई घर में भोजन बना रही थी, जगन्नाथ मिश्रा बाहर गए थे, तो निमाई जब प्रांगण में आया तो एक सर्प वहां पर घूम रहा था। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाई, वे सर्प वहां पर घूम रहा था। धरी लेन सर्प प्रभु बालक लीलाए, तो निमाई घुटन के बल पर चलकर गए उस सर्प के पास और सर्प को हाथ में ले लिया, और हाथ में लेकर कभी नीचे कभी ऊपर कभी गले में, इस प्रकार से निमाई सर्प के साथ खेलने लगा। कुंडली करिया सर्प रहीला बैठिला, ठाकुर थाकिला सर्प ऊपरे सुनिया। सर्प को भी आनंद आ गया, वे भी निमाई के साथ खेलने लगा। सर्प कभी निमाई के ऊपर, निमाई सो जाता सर्प उसके ऊपर सोता, तो कभी निमाई सर्प के ऊपर सो जाता, और कभी वह सर्प कुंडली लगा कर बैठ जाता तो निमाई भगवान विष्णु की तरह उसमें सो जाते। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्यों नहीं सोते, वे साक्षात कृष्ण ही तो है, और ये सर्प भी कोई साधारण सर्प नहीं, भगवान के नित्य धाम का यह वह शेषनाग है जिसकी सैया पर भगवान शयन करते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान कई दिनों से चले गए हैं, तो भगवान का दर्शन करने के लिए आया था, परंतु यहां कौन जाने कि ये भगवान का अपना पार्षद है या सर्प है। आते व्याते सबे देखी हाय हाय करे, तो उस प्रांगण तो रास्ते में था, कई लोग वहां से गुजर रहे थे, तो देखा कि निमाई सर्प के कुंडली के ऊपर बैठ गया है, तो सब लोग हाय 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 करने लगे। सुनिया हसेने प्रभु सर्परे ऊपर है, और सब लोग हाय हाय करने लगे, और यहाँ पर निमाई हंसने लगा। गरुड़ गरुड़ करी डाके सर्वजन, पिता माता आदि भय करे ये क्रंदन। जितने भी बड़े छोटे लोग थे वे गरुड़ गरुड़ करते हुए क्रंदन करने लगे, रोने लगे। आपको पता होगा गरुड़ जी से सर्प बहुत डरते हैं, गरुड़ को पुकारने लगे आप आओ और सर्प को भगाओ। प्रभु रे एडिया सर्प पलाय तखन, पुनी धरी वारे यान शीश चिनंदन। उतने में सची देवी वहां पर आई और देखकर वे तो बेहोशी हो गई और कहा कि कोई मेरे निमाय को बचाओ, कोई मेरे निमाय को बचाओ, वह सर्प डस लेगा मर जाएगा। तो एक दो जन वहां पर हिम्मत करके रिस्क लेकर गए निमाय को बचाने के लिए, और निमाय को उस सर्प से दूर कर दिए, परंतु निमाय उस सर्प को छोड़ना नहीं चाहता था, वो निमाय को खींच रहे थे, निमाय सर्प को हाथ में पकड़ रहा था। कहा कैसे भी करके छोड़ो उसे। धरिया आनिया सब करी लेने कोले, चीर जीव हो करी नारी गण बोले। अंत में कैसे भी करके निमाय के हाथ से उस सर्प को छुड़ाया और निमाय को लेकर सची माता के गोद में रख दिया, और सची माता कहने लगी जुग जुग जीव बेटा, कैसे भी करके आज तुम्हारी रक्षा हो गई, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। सभी माताएं उसे आशीर्वाद देने लगी, वे क्या जाने कि सबको आशीर्वाद देने वाले उसकी गोद में बैठे हैं। वास्तव में ये है वात्सल्य भाव। यद्यपि साक्षात भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं, ऐसे हजारों हजारों सर्प इसकी इच्छा शक्ति मात्र से मर जाते हैं, वो भगवान उसके गोद में बैठे हुए हैं, परंतु कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ये आज बच गए। केहो रक्षा बांधे केहो पढ़े स्वस्ति वाणी, कुछ लोग तो आए और हाथ में रक्षा बांधने लगे कि आज के बाद कभी ऐसा न हो, और कुछ लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेदों के मंत्र पढ़ने लगे कि कभी निमाय के ऊपर इस प्रकार से विघ्न न आए। केहो अंगे देह विष्णु पादो दकानी, और कुछ लोग भगवान विष्णु के चरणों तक जल चरणा चरण अमृत उनके ऊपर डालने लगे। केहो बोले बालक केरे पुनर्जन्म है। कुछ लोग कहने लगे अच्छा हुआ बच गया, ये बालक का आज पुनर्जन्म हो गया है, मर ही चुका था, ये मर ही चुका था परंतु पुनर्जन्म हुआ है, ये बच गया। केहो बोले जाति सर्प तेई ना लंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जाति का सर्प है, डसने वाला सर्प नहीं था, जहरीला सर्प नहीं था, इसे डरने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रभु तो सब कुछ जानते थे, इसलिए हासे प्रभु गौर चंद्र सवारे चाहिया पुनः पुनः जाए सबे आने न धरिया। परंतु निमाई महाप्रभु तो हंस रहे थे और हंसते हंसते पुनः पुनः सर्प के पास जाने के लिए अपनी शक्ति लगा रहे थे। भक्ति करी जे ये सब वैद्य गोप्य सुने, संसार भुजंगे तारे ना करे लंघन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु की यह लीला यदि कोई श्रद्धा से भक्ति से सुनता है तो संसार रूपी सर्प उसे कभी नहीं डसता है। ये संसार सर्प के समान है। संसार को सर्प इसलिए कहा गया है, इस संसार में जो काल है ये काल कभी व्यक्ति को एक साथ नहीं मारता है, धीरे 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 ग्रसित करता है। पहले बालक, फिर जवान, फिर बूढ़ा, धीरे 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 एक एक दिन में वो उसे काटता जाता है। ठीक उसी प्रकार आप देखो सर्प कभी किसी को खाता है तो निगलता है, वो धीरे 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 करके अंदर ले लेता है। तो इस संसार रूपी सर्प से यदि कोई बचना चाहता है तो महाप्रभु की यह लीला बारंबार श्रवण करनी चाहिए। तो महाप्रभु की वैसे तो अनेक लीला है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। महाप्रभु यद्यपि भगवान कृष्ण ही है इसलिए इस लीला में भी मक्खन चोरी करना नहीं भूले। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब वे चलना सीख गए तब दूसरों के घर पर जा जाकर मक्खन चुराते थे और दूसरे के शिशु को बालकों को रुलाते थे। लोगों के घर पर जाकर मक्खन खाते और किसी के घर पर मक्खन नहीं मिलता तो उनके घर पे जो छोटे छोटे बालक सोए हुए रहते थे उसे चिमटी करते थे और थप्पड़ मार देते, कैसे भी करके रुला करके वहां पर निकल जाते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में गोपियों के घर जा जाकर मक्खन चोरी किया करते थे। और ब्रज वृंदावन की गोपियां आती थी शिकायत करने के लिए कि यशोदा आप अपने लाला को कृष्ण को समझाओ, हमारे नाक में दम करके रख दिया है। यशोदा मैया कहती बताओ क्या हुआ, तो गोपियां कहती हैं क्या करे क्या बताए, हम जब घर पर हमारे बालकों को सुलाती हैं, घर के काम में व्यस्त रहती हैं, तभी आपका कृष्ण कैसे भी करके हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर सभी बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए दूध बचता नहीं। अच्छा यशोदा माँ कहती है ऐसा करता है मेरा लाला कृष्ण, यदि वे ऐसा उत्पात करता है तो उसे डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं कि हम जब इसे डांटते हैं तो उल्टा ये हमें डांटता है, ये दिखता है छोटा सा बालक परंतु छोटा नहीं है, इसकी बुद्धि बहुत बड़ी है, हम जब इसे डांटती हैं तो ये हमें डांटता है। क्या कहता है कि मैंने मेरे बछड़े को दूध पिलाया है कि आपके बछड़े को दूध पिलाया है, आपका बछड़ा यदि दूध पिएगा तो आपका बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान होगा। अरे भाई बछड़ा आपका, दूध आपका और आपका बछड़ा बलवान हो रहा है तो उसमें मुझे क्या दोष है, मुझे डांटता है। इतना नहीं क्या बताइए मैया यशोदा, जब हम उस बछड़े को बांधने जाती हैं तो ये हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर न जाने कितना कितना मक्खन खाता है और खिलाता है। मैया क्या बताए, छोटा सा बालक है, छोटा सा पेट है, मक्खन खा खा कर कितना खा सकता है, ये मक्खन खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है परंतु इसके साथ पूरी टीम को लेकर आता है और इसकी टीम में मनसुखा सुदाम इत्यादि, चलो वो भी बालक खाए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कितने छोटे छोटा पेट है उनका, परंतु अपने साथ बंदरों को लेकर आता है और तहस नहस मचा देता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में मक्खन चोरी करते थे, उसी प्रकार निमाई चैतन्य महाप्रभु भी बचपन में लोगों को आनंद देने के लिए उनके घर में मक्खन की चोरी कर रहे थे। इस प्रकार से निमाई दिन भर दिन बढ़ता गया। एक दिन की बात, निमाई 3-4 साल के हो गए होंगे। 4 साल की उम्र में एक बार उनकी मैया ने, मैया सच्ची ने बहुत सुंदर अलंकार पहनाया था। होता है छोटे छोटे बालक को कमर में सुंदर सोने का या चांदी का अलंकार पहनाते हैं, पांव में घुंघरू पहनाते हैं, हाथ में, गले में सुंदर सुंदर अलंकार पहनाते हैं। तो इस प्रकार से एक बार यह निमाई रास्ते में खेल रहा था, उतने में 2 चोर वहां पर आए और आकर देखा कि बालक ने इतना सुंदर सुंदर गहना पहना है, चलो इसका किडनैप कर लेते हैं। परंतु दोनों चोर ने मन ही मन में सोचा कि यदि इसको उठाएंगे तो ये रोने लगेगा और रोएगा तो सब लोग गांव वाले एकत्रित हो जाएंगे और हमारी पिटाई होगी, क्या करें। तो सबसे पहले उन्होंने प्लान बनाया, थोड़ी बहुत चॉकलेट लेकर आए। बालक तो चॉकलेट के भूखे होते हैं, चॉकलेट और खिलौने लेकर आए और कहा, देखो निमाई आपके लिए लेकर आए हैं। निमाई ने जैसे ही हाथ में लिया और निमाई को अपने कंधे पर बिठा दिया, कहा कि चलो हम आपको अपने घर पर छोड़ देते हैं। निमाई ने कहा हाँ चलो। तो निमाई को अपने कंधे पर बिठाया और दोनों चोर चलने लगे। चलते चलते निमाई चॉकलेट खाता गया, चॉकलेट समाप्त हुआ तो रोना प्रारंभ किया और दूसरे चोर ने कहा चुप करो, इसे चुप करो, जो भी चाहिए लेकर दो। तो रास्ते में से बर्फ का गोला खिलाते थे, कभी कैंडी खिलाते थे, कभी चॉकलेट खिलाते थे, कभी खिलौना लेकर देते थे। इस प्रकार से कैसे भी करके गांव से बाहर निकल गए और दोनों चोर आपस में सोच रहे थे कि अभी घर आ जाएगा हमारा और सारा अलंकार जितना भी सोना गहना है सब निकाल लेंगे और इसे भगा देंगे। मन ही मन में वो लड्डू फूट रहे थे। और अब कुछ धन चाहिए तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे चॉकलेट खिलाकर और अलग अलग व्यंजन मिठाई खिला खिलाकर। और यहां पर जगन्नाथ मिश्र सची देवी को पता चला कि निमाई नहीं है। जोर जोर से रोने लगे कि कहीं भी पूरा गांव छानवारा परंतु निमाई नहीं मिला, कई गली गली में ढूंढा नहीं मिला। अंत में रोने लगे और यहां पर निमाई को ये दोनों चोर लेकर जा रहे हैं। अब भगवान तो अद्भुत मायावी है, कहते हैं देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की अद्भुत माया है। भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा चक्कर चलाया, भगवान ने ऐसा मोहित किया उन चोरों को। वे चोर उस निमाई को लेकर चोर के अपने घर जा रहे थे, परंतु वे चोर इतने माया में फंस गए तो उसने यूटर्न मार दिया। चोरों को यही लग रहा था कि हम हमारे घर जा रहे हैं, उसे पता नहीं चला कि कब यूटर्न लग गया और कब हम निमाई के घर जा रहे हैं। बस घर आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। चोरों ने सोचा कि बस हमारा घर आ गया और निमाई को नीचे रखा। नीचे रखकर देखा तो ये तो निमाई का घर, जगन्नाथ मिश्र सामने खड़े थे। निमाई पापा करते हुए चले गए और ये जो दोनों चोर एक दूसरे के आमने सामने देखने लगे, ये क्या हो गया, हम तो हमारे घर पर लेकर आए थे, ये उन्हीं के घर जिस जहां से उठाया था वहीं हम लेकर आए इसे। दोनों चोर आपस में सोच रहे थे, यहां पर निमाई घर पे चला गया। सच्ची माता प्रसन्न हुई, जगन्नाथ मिश्र प्रसन्न हुए, तो उनमें कई लोगों में से किसी ने कहा कि अच्छा निमाई को यहां पर लाया कौन, हमारे घूमे हुए निमाई को यहां पर लाने वाले को उपहार देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, बुलाओ बुलाओ उसे। तो 10-15 हट्टे कट्टे लोग वहां पर उसे चोर को बुलाने के लिए गए और चोरों ने समझा कि ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो दूर से देखा कि ये लोग यहां पर हमारी ओर आ रहे हैं, निश्चित हमें मार, ये निमाई ने सब कुछ बता दिया होगा और ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। चोर तो बिल्कुल दुम दबाकर वहां से भागे। ये 10 लोग गए, कहां भाग रहे हो, ये उनके पीछे भागे, आप भागो मत भागो मत। ये सोचने लगे निश्चित ही हम हमारी पिटाई करने वाले हैं। इतना जोर से भागे गांव के बाहर निकल गए। तब ये लोगों ने सोचा कि बहुत नम्र भक्त है, इतनी सुंदर सेवा करने के बाद उपहार भी लेना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से निमाई ने दो चोरों के ऊपर कृपा की। हसन वृंदावन दास ठाकुर वहां पर लिखते हैं कि जो भगवान के चरण बड़े बड़े योगियों के योग में नहीं आते हैं, ध्यानी लोग हजारों हजारों जन्मों तक ध्यान करते रहते हैं परंतु उनके ध्यान में भी भगवान के चरण नहीं आते हैं, योगी लोग यत्न करते रह जाते हैं परंतु उसे भगवान का चरण प्राप्त नहीं होता है, वही भगवान का चरण यह चोरों को प्राप्त हुआ। उस चोर ने भगवान को अपने कंधे पर बिठाया, धन्य है वह चोर। वास्तव में ऐसा चोर बनना भी बहुत अच्छा है जो चोर बनकर भगवान को कंधे पर बिठाया, धन्य है वह चोर। भगवान की अद्भुत कृपा उन चोरों पर हुई। ऐसे बहुत बहुत लीला भगवान की हुई। और एक लीला का वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मिट्टी खाने की लीला। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार मिट्टी खाई थी, बलदेव जी ने शिकायत की यशोदा मैया से कि यशोदा यशोदा आपके लाला ने मट्टी खाई है। मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने के लिए गई कि आज के बाद मिट्टी खाना बंद करवा दूंगी। भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, इसमें कोई दोराय नहीं है। और मैया को आते देखा तो भगवान कृष्ण अपनी लाल ग्रंथि बनाकर उस मिट्टी को निगलने लगे, परंतु भगवान का छोटा सा मुख कैसे मिट्टी खा सके। मैया ने आया और पूछा कि कृष्ण क्या तुमने मट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा मुंह में मट्टी थी, कैसे ना कहे तो भी दिख जाए। मैया ने पूछा कृष्ण मट्टी खाई है। कृष्ण ने जब ना कहा तो भागवत में लिखा है, मैया ने जब पूछा कि कृष्ण मट्टी खाई है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा नाहम भक्षितवान अम्बे, हे अम्ब हे माँ अहम न भक्षितवान, मैंने मट्टी नहीं खाई। यशोदा ने कहा तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे सखा। कृष्ण ने कहा सर्वे मिथ्याभिषंशिन, ये सब लोग मिथ्या है, सब लोग झूठे हैं। यशोदा मैया कहती अच्छा ये सब लोग झूठे हैं और तुम एक ही हरिश्चंद्र की औलाद बनकर पैदा हुए हो, तुम एक सत्यवादी हो, ये सब लोग झूठे हैं। हाँ मैया सब लोग झूठे हैं। और मैया यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरस्तर ही पश्यते अहम मुखम, तो मेरा मुख देख लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यशोदा ने कहा दिखाओ तुम्हारा मुख, खोलो तुम्हारा मुख। भागवत में वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा को अपना मुंह दिखाया तो यशोदा ने भगवान के मुख में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन किया। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, उस एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, उस पृथ्वी में एशिया खंड, एशिया में भारत, भारत में मथुरा, मथुरा में गोकुल और उस गोकुल में एक छोटी सी यशोदा और छोटे से कृष्ण का दर्शन किया। जो यशोदा कृष्ण को छड़ी से मारने के लिए आई थी, कृष्ण के मुख को देखकर वही यशोदा बेहोश होकर गिर गई। दंड देने वाला ही मूर्छित हो गया। भाव यह है कि वहां पर कृष्ण ने मट्टी खाई, यहां महाप्रभु ने भी मट्टी खाई। और महाप्रभु ने मट्टी खाई परंतु बहुत सुंदर सिद्धांत प्रकट किया। कथा आती है कि एक बार सची माता ने निमाई को संदेश खाने के लिए दिया। संदेश जानते हैं, दूध की एक मिठाई होती है, हमारी भाषा में पेड़ा, पेड़ा ही समझ लीजिए, पेड़ा नहीं परंतु पेड़े के समान होता है। सची माता ने एक कटोरे में बहुत सारे पेड़े संदेश निमाई को दिया कि आप खाओ और देकर चली गई। और कुछ समय के बाद आई तो वह पेड़ा तो वैसे के वैसे ही थे, निमाई मट्टी खा रहे थे। तो सची माँ आकर डांटने लगी कि मट्टी क्यों खा रहे हो, इतना सुंदर पेड़ा खाने के लिए दिया, मट्टी क्यों खा रहे हो। तो निमाई भोली सी सूरत बनाते हुए कहते हैं कि मैया मुझे डांट क्यों रही हो, मुझे डांट क्यों रहे हो? मट्टी और पेड़े में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो है। अच्छा कैसे? देखिए कितना सुंदर सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं मैया। मट्टी और पेड़े सब एक ही तो है। जहां से पेड़ा उत्पन्न होता है वहीं से मिट्टी उत्पन्न होती है। ये पेड़ा कहां से उत्पन्न होता है? इस मट्टी से घास उत्पन्न होता है और घास गाय खाती है, गाय से दूध बनता है और दूध से पेड़ा बनता है। तो ये पेड़ा मट्टी का ही विकार है। मट्टी और पेड़े में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। तो फिर मुझे क्यों डांट रही हो? सची माता ने कहा कि यद्यपि ये दोनों बराबर है, यद्यपि मट्टी से ही घास बनता है, घास से दूध बनता है, दूध से पेड़ा बनता है, ये दोनों मट्टी का ही विकार है, परंतु दोनों में अंतर है। बेटा यदि यद्यपि ये दोनों एक वस्तु से ही पैदा होता है, परंतु यदि तुम मट्टी खाते हो तो तुम्हें रोग हो जाएगा और पेड़ा खाते हो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। अच्छा माँ ऐसा है तो मैं कल से पेड़ा ही खाऊंगा। कथा तो बहुत छोटी है परंतु यहां पर बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट होता है। इस संसार में प्रायः सभी लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारे गुजरात में कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा बन जाएगी एक दिन यह आत्मा परमात्मा हो जाएगी। या कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा सब एक ही है, कुछ लोग कहते हैं सब ब्रह्म है। ऐसे लोगों को भगवान उपदेश दे रहे हैं कि यद्यपि आत्मा और परमात्मा का देह समान है, दोनों सच्चिदानंदमय है। जैसे मट्टी और संदेश, मट्टी और पेड़े दोनों एक ही चीज के विकार है, परंतु उनके गुणों में अंतर है। जैसे आत्मा परमात्मा का ही अंश है परंतु दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है। आत्मा परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है। यद्यपि दोनों सच्चिदानंदमय है, कुछ लोग कहते हैं दोनों सच्चिदानंदमय है तो दोनों परमात्मा हुए, परंतु आप देखिए एक गरम गरम तवा है, गरम गरम तवे के ऊपर एक पानी का छोटा सा बूंद डालो तो वो फन 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 करके धुआं हो जाता है, परंतु उस गरम गरम तवे के ऊपर समुद्र को डाला जाए तो वो तवा कहां खो जाएगा उसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक उसी प्रकार वह समुद्र की बूंद और समुद्र में गुणों की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, परंतु मात्रा में अंतर है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी सच्चिदानंदमय है, परमात्मा भी सच्चिदानंदमय है, परंतु मात्रा में अंतर है। आत्मा अणु है और परमात्मा विभू। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाय, यद्यपि ये दोनों एक के ही विकार है परंतु दोनों में अंतर है। मट्टी खाते हो तो रोग आता है और संदेश खाता हो तो शक्ति बढ़ती है। तो वैसे ही आत्मा और परमात्मा में अंतर दिखाया यह मट्टी खाने की लीला से। तो इस प्रकार से निमाय नटखट निमाय बहुत नटखट लीला करते रहते हैं। और एक लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं कि एक बार नदिया गांव में नवद्वीप में एक सन्यासी ब्राह्मण आए और वे ब्राह्मण बहुत तेजस्वी थे। और कल हमने सुना कि जगन्नाथ मिश्रा सर्व धर्म तत्पर, धर्म में तत्पर थे, इसलिए गांव में कोई भी ब्राह्मण आता सन्यासी आता तो वे अपने घर उसे बुलाते और भोजन कराते। एक सन्यासी ब्राह्मण, तेजस्वी सन्यासी ब्राह्मण अपने गले में भगवान श्री नील माधव की मूर्ति विग्रह को लेकर घूमते रहते थे। जगन्नाथ मिश्रा उसे मिले और उसे अपने घर पर लेकर आए, घर पर लेकर आए और कहा कि प्रभु आपके लिए क्या भोजन बनाया, आज्ञा दीजिए। वे ब्राह्मण बहुत शुद्ध थे, चुस्त ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ने कहा कि हे मिश्र जी, प्रभु मैं किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाता हूं। यदि आपको मुझे भोजन कराना ही है तो कच्चा सीधा आटा इत्यादि दे दो, मैं स्वयं बना लूंगा। तब जगन्नाथ मिश्र ने अपना रसोई घर बहुत सुंदर तरीके से धुलवाया, साफ कराया और कुछ वेजिटेबल साग भाजी सब्जी और कच्चा आटा ला कर दिया, कहा कि आप अपने हाथ से बना सकते हो। ये ब्राह्मण बहुत सुंदर सब्जी को समारा, काटा और उसको फ्राई किया, रोटी बनाया। एक दो घंटा लगा होगा, आप समझिए 6 बजे से ब्राह्मण ने प्रारंभ किया था और ये बनाने में 8 बज गए। और 8 बजे बहुत सुंदर भोजन तैयार हो गया और वे जो नील माधव की मूर्ति लेकर घूमते थे भगवान को रखा और बहुत सुंदर एक थाली में भगवान को भोग लगाया। और भगवान को भोग लगाकर कहा कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। हे भगवान, हे प्रभु, आप ये भोग अर्पण करे, भोग ग्रहण कीजिए और इसको प्रसाद बनाइए। अब भक्त को भक्त की पुकार से भगवान निश्चित आते हैं। तुरंत वह निमाए वहां पर चड्डी पहनकर दौड़ते हुए आया। ब्राह्मण आंख बंद करके भोग लगा रहा है और निमाए बैठकर वहां पर खा रहा है। जैसे ही ब्राह्मण का आंख खुला तो देखा कि निमाए ने वह सारा भोजन को जूठा कर दिया। वह ब्राह्मण चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, ये लड़का कौन है, लड़का कौन है जिसने भगवान के सारे भोग को जूठा कर दिया। इस बच्चे को लेकर जाओ, बच्चे को लेकर जाओ। घर के सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए और देखा तो निमाए उस भोग को खा गए, जूठा कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि 2 घंटे की सारी मेहनत पानी में गई, अब मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। एक काम करो, मुझे कुछ फ्रूट फल दे दो। जगन्नाथ मिश्रा बहुत दुखी हुए निमाय के इस, पहले तो निमाय को बहुत डांटे, फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे नसीब में ही आज फलाहार लिखा है, आप इसे डांटिए मत, तो बालक है। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि हो, हम फिर से रसोई घर साफ करवा देते हैं, फिर से सब्जी इत्यादि देते हैं, आप फिर से बनाओ। अब 8:30 तो बज चुका था। अब जगन्नाथ मिश्रा के बहुत कहने पर ब्राह्मण ने दूसरी बार प्रारंभ किया। दूसरी बार वह सब्जी समारा, उसको फ्राई किया, रोटी बनाया, बनाते बनाते 10:30 बज गए। और 10:30 बजे वह ब्राह्मण फिर से भोग लगाया, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो महावदान्याय, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नाथ, आप भोग ग्रहण कीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए। इतना कहते ही निमाय दौड़ कर आया और आकर भोजन करने लगा। ब्राह्मण ने आंख खोला तो निमाय सामने बैठे और दूसरी बार झूठा कर दिया। चिल्ला कर कहने लगा, ये बालक को किसी ने पकड़ कर नहीं रखा, मैंने कहा था पकड़ के रखो। फिर से जगन्नाथ मिश्रा सची देवी सब लोग आए और आकर निमाय को बहुत डांटा, बहुत डांटा। ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरे नसीब में केवल फलाहार ही लिखा है, मुझे फल दे दो, मैं खा लूंगा। जगन्नाथ मिश्र पांव में गिर गए, चरण में गिर गए ब्राह्मण के, क्षमा कीजिए, हमारा ये बालक बहुत नटखट है, ये बहुत नटखट है। एक काम करते हैं, इस बालक को एक कमरे में बंद करके हम रखते हैं, आप फिर से बना लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, 10:30 बज चुका है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती में उठना होता है हमें। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, नहीं नहीं, यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हमें अपराध लगेगा। उतने में निमाय का बड़ा भाई विश्व रूप भी आए और वे भी प्रणाम किए कि ब्राह्मण देवता, आप पिताजी की इच्छा को पूर्ण कीजिए, अंतिम बार बना लीजिए, अब निमाय को दूसरे कमरे में बंद करके रखते हैं। निमाय को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। यहाँ पर 10:30 बजे प्रारंभ किया भोजन बनाना, सब्जी को काटा, उसको फ्राई किया, रोटी बनाया। 11:30-12:30 बज गए और रात को 12:30 बजे भोग लगाया, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च हे प्रभु, हे नाथ, आप भोजन ग्रहण कीजिए, आप भोग ग्रहण कीजिए। इतना कहते ही भगवान कैसे रह सके। भगवान को जिस कमरे में बंद किया था और बाहर जगन्नाथ मिश्र पहरा लगाकर बैठे थे, सबको योग निद्रा में सुला दिया। और भगवान दौड़कर आए और दौड़कर आकर खाने लगे। और उस ब्राह्मण जैसे ही आंख खोल के चिल्लाने गया तो वह निमाय ने उसके मुख पर हाथ रख दिया। क्यों चिल्लाते हो? बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं आता हूं तो तुम चिल्लाते हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें कहा, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। निमाय हाथ रखकर बोलता है, तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे नहीं जानते हो। इस प्रकार से कहकर निमाय ने चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु का रूप का दर्शन, षडभुज दर्शन करवाया और उस ब्राह्मण ने भगवान में एक नहीं तीन तीन रूप, भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और चैतन्य महाप्रभु का षडभुज दर्शन उस ब्राह्मण ने किया और भगवान का दर्शन करके ब्राह्मण धन्य धन्य हो गया। ब्राह्मण नाचने लगा और नाचते हुए वे इतना हर्षित हो गया, इतना हर्षित हो गया। फिर तो वह ब्राह्मण वो प्रसाद को अपने शरीर पे लगाने लगा, कुछ खाने लगा, कुछ सिर पर लगाने लगा। इस प्रकार से आनंदित आनंदित हो गया और भगवान ने कहा, देखो मैंने तुम पर कृपा की है, तुम्हें दर्शन दिया है, तुम आज के बाद किसी को भी मैं यह हूं, मैं भगवान हूं, किसी को भी मत कहना। यदि कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। दूसरे दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण के हृदय में बहुत हो रहा था कि जगन्नाथ मिश्र या शची देवी जिस बालक के साथ रह रहे हैं, जिस बालक को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, मन में हो रहा था कि कह दूं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ तुम्हारे घर पर खेल रहे हैं, तुम्हारे घर पर है, ये साधारण बालक नहीं। परंतु ब्राह्मण नहीं कह सके। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और भी बहुत बहुत लीला चैतन्य महाप्रभु की है। उस मायापुर नवद्वीप में छोटी छोटी कन्याएं अच्छा पति प्राप्त करने के लिए व्रत रखा करती थी। बालकियां छोटी छोटी लड़की व्रत करती है, शिव जी का या कात्यायनी देवी का व्रत रखती है कि उसे अच्छा पति प्राप्त हो। तो नवद्वीप में छोटी छोटी बालकियों ने व्रत रखा था और व्रत करके गंगा पूजन के लिए गंगा के वहां जा रही थी, गंगा देवी का पूजन करने के लिए। बहुत सुंदर आरती की प्लेट थी, उसमें दिया बत्ती अगरबत्ती और सुंदर पेड़े इत्यादि भोजन व्यंजन भी था। तब निमाय उसे रास्ते में मिलते थे, कहते थे कहां जा रही हो? तब सारी लड़कियां कहती थी कि हम गंगा की पूजा करने जा रही हैं, हम शिव जी की पूजा करने जा रही हैं। तब निमाय कहते, शिव और गंगा की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी पूजा करो। तब सारी गोपी सारी लड़कियां कहती थी, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, अपराध होगा। तब निमाय कहते थे कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ हूं और ये गंगा और ये शिव तुम जिसकी पूजा करने जा रहे हो पता है कौन है? कहते गंगा यमुना दासी मोर महेश किंकर, ये गंगा और यमुना मेरी दासी है और महेश शिव जी प्रभु आपके लिए क्या करूं क्या करूं क्या आज्ञा है, कहता रहता है, मेरे पीछे घूमता रहता है, ये सब लोग मेरे दास हैं, तुम मेरी पूजा करो सब कुछ सारी कामना पूर्ण हो जाएगी और यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगे, मेरी सेवा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें बूढ़ा पति मिलेगा और उसको लकवा हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस प्रकार से डर के मारे वो लड़कियां वह निमाय की पूजा करती थी और निमाय को भोजन इत्यादि नैवेद्य जो भी था निमाय को देती रहती थी और कुछ लोग भाग जाती थी तो निमाय उसे बहुत श्राप दिया करते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की अनंत अनंत अपार अपार लीलाएं हैं। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए और बड़े होकर अपने पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत होने के बाद जीवन निर्वाह करने के लिए, घर चलाने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोली। वे स्कूल में अपने छात्रों को विद्यार्थी को पढ़ाते थे क्योंकि निमाय संस्कृत के विद्वान पंडित थे, भगवान है साक्षात सरस्वती जिससे प्रकट होती हैं। उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी विद्या नहीं पता है। तो संस्कृत की स्कूल चला देते, विद्यालय चलाते थे। उतने में एक कथा आती है कि कश्मीर में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम केशव था, वे कश्मीर में रहने वाला था इसलिए उसे केशव कश्मीरी कहा करते थे। और यह केशव कश्मीरी ब्राह्मण इतना संस्कृत जानता था, पूरे विश्व भर में जितने भी संस्कृत के विद्वान पंडित होते थे उसके साथ शास्त्रार्थ करता था, तर्क करता था और तर्क कराकर सबको हरा देता था। पूरे विश्व में रहने वाले सभी लोगों को जीत लिया था इसलिए उसे दिग्विजय उपाधि दी गई थी, दिग्विजय केशव कश्मीरी। और दिग्विजय केशव कश्मीरी अपने साथ हजारों लोगों को साथ में लेकर चलता था और उसके साथ पोथी पत्रा सब कुछ था, और जो लोग हार जाते थे उसको बंदी बना लेता था। तो उसे पता चला कि नवद्वीप जो विद्या का नगर है, विद्या का गढ़ है, पता चला कि नवद्वीप में बहुत लोग विद्वान हैं। तो वह केशव, दिग्विजय केशव कश्मीरी घूमते 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 नवद्वीप में आया और नवद्वीप में आकर ब्राह्मणों को पूछा कि यहां पर सुना है कि सब लोग बड़े बड़े संस्कृत के पंडित रहते हैं। ब्राह्मणों ने आपस में बैठकर मीटिंग किया कि यदि हम लोग केशव कश्मीरी के साथ शास्त्रार्थ किए, तर्क किए और हम लोग हार गए तो हमको बंदी बना लेगा, क्या करें क्या करें। तो निमाय जो बालक है हम कह देंगे कि इस नवद्वीप में सबसे बड़ा विद्वान वो बालक है, और बालक यदि हार जाता है तो उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। तो केशव कश्मीरी जब नवद्वीप में आया और पूछा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे इस नवद्वीप में एक ही विद्वान है और वो है निमाय। अच्छा निमाय कहाँ है वो पंडित, कहते हैं उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर उनकी स्कूल है, आप वहां पर जाइए। केशव कश्मीरी, दिग्विजय केशव कश्मीरी घूमते घूमते गंगा के तट पर आया, आकर देखा तो निमाय इतना छोटा सा बालक। उन्होंने मन में सोचा था कि बहुत बड़ा होगा, परंतु वो तो छोटा सा बालक, और कहा कि ये संस्कृत जानता है। दिग्विजय केशव कश्मीरी ने निमाय को कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत संस्कृत के बड़े विद्वान पंडित हो। निमाय, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने बिल्कुल गलत सुना है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, परंतु मैंने आपके बारे में अवश्य जाना है कि आप पूरे विश्व में विजय प्राप्त करके आए हो। प्रभु आप तो महान हो, आपके सामने हम क्या है, हम पतिंगे हैं। अच्छा, दिग्विजय ने कहा आप मेरी महानता को जानते हो। हाँ, दिग्विजय हंसने लगा, देखो शास्त्रार्थ करने से पहले ही ये बालक हार गया। तब उसने कहा कि आप तो महान हो, हम तो पहले से ही हारे हुए हैं, हारे हुए को आप क्या हराओगे। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है इसलिए हमारी इच्छा हो रही है कि आपके मुख से कुछ सुना जाए। दिग्विजय केशव कृष्ण ने कहा कि बोलो क्या सुनना चाहते हो। निमाय ने कहा कि गंगा के तट पर खड़े हैं, एक काम करो गंगा की महिमा, गंगा की स्तुति करो। दिग्विजय केशव कश्मीरी साधारण व्यक्ति नहीं था, साक्षात सरस्वती की कृपा थी, उनके जीवा पर सरस्वती बैठी थी। तुरंत ऑन द स्पॉट उन्होंने 500 श्लोक की रचना कर दी और झांझावात की तूफान की तरह आंधी के समान वो गंगा की महिमा को गाने लगा। और हमारी जैसा व्यक्ति तो उसे याद भी सुन भी नहीं सकता है ठीक से, इतना जोर से। जैसे मैं आपको कहूं ऐ उल रेंडु के ओच हई वरट जन घम जन जम धन हरय जड़ वट लम, ये सब संस्कृत के मूल श्लोक हैं, पाणिनि जी के सूत्र हैं। ऐसे 500 श्लोक गाने लगा, परंतु वह श्लोक समाप्त करने के बाद निमाय ने कहा वाह बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर कविता गाई आपने, परंतु एक बात कहूं आपको बुरा ना लगे तो कहूं। क्या बात है, आपके काव्य में बहुत गुण है, बहुत गुण है, 5 गुण दिखाए, और दुख बुरा न लगे तो एक बात कहूं, आपके काव्य में 5 दोष है। केशव कश्मीरी मेरे काव्य में दोष हो नहीं सकता है। महाप्रभु ने कहा कि बुरा न लगे तो दिखा दो श्लोक दोष। कहा तो उस 500 श्लोक में से पांचवा श्लोक महाप्रभु ने पहले गाया। श्लोक बोलते ही दिग्विजय सोच में पड़ गया कि मैं तो इतना तेज गति से बोला था, इतने इसने उस श्लोक को याद भी रख लिया और मेरे सामने बोल रहा है। और बोलकर उन्होंने इसका वर्णन किया और महाप्रभु ने निमाय ने उसके उसका जब दोष दिखा दिया तब दिग्विजय केशव कश्मीरी पानी पानी हो गया। अरे बाप रे, ये बालक मेरे काव्य में मेरी रचना में दोष दिखा रहे। तब निमाय ने कहा कि डरो मत, दोष तो बड़े बड़े कवियों में होता है। चंडीदास की कविताओं में दोष है, कालिदास की कविता में दोष है, आपकी कविता में दो तीन दोष मिल जाए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप टेंशन मत लो, हम तो आपसे छोटे ही हैं, हम आपसे बड़े नहीं हैं। परंतु वे रह नहीं पाया और रात को अपने घर पर चला गया और घर पे जाकर सरस्वती देवी का आवाहन किया। देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं हारूंगा। वास्तव में दिग्विजय केशव कश्मीरी ने तपस्या करके सरस्वती देवी को प्रकट किया और उसे वरदान लिया था। कहा कि हे देवी सरस्वती, आपने मुझे वरदान दिया, कहां गया वह वरदान, आज मैं एक छोटे बालक से हार गया। तब सरस्वती देवी ने इतना ही कहा कि मैंने आपको वरदान दिया था कि संसार के किसी भी मनुष्य से नहीं हारोगे, परंतु आज तुम जिससे तर्क करके आए हो ना, वो साधारण मनुष्य नहीं, वो तो मेरा भी बाप है, मेरा स्वामी है वो। मैंने कहा था किसी जीव से नहीं हारोगे, परंतु मेरे प्रभु से, मुझे जिससे शक्ति मिली है उससे नहीं हारोगे, ऐसा नहीं कहा। हे केशव कश्मीरी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात भगवान है और मैं तो कहती हूँ जाओ और उनके चरण पकड़ लो, माफी मांग लो। दिग्विजय केशव कश्मीरी दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निमाय के चरणों में आकर गिर गया। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद वह दिग्विजय केशव कश्मीरी जो अहंकारी था वह हरिनाम जप करने लगा और हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरिनाम जप करते हुए भगवान का परम भक्त बन गया। इस प्रकार से महाप्रभु की लीला नित्य निरंतर चल रही थी। समय हो चुका है सुदेव प्रभु, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे बहुत बहुत चैतन्य महाप्रभु की लीला है। एक और बता दो, ठीक है, चलो एक बता देता हूँ। ये सब तो निमाय की लीला है। अब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके जीवों के ऊपर क्या कृपा दिए वह एक अंतिम लीला बता देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ एक बार वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में एक धोबी घाट पड़ा और उस धोबी घाट पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी उस टुकड़ी से अलग हो गए, उस धोबी के पास आए और धोबी के पास आकर धोबी को कहने लगे कि धोबी धोबी हरि बोल बोलो। धोबी तो अपना कपड़े धोने में मशगूल है, वे क्यों हरि बोल बोलने जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि बोल बोलो। धोबी ने कहा कि यदि मैं हरि बोल बोलूंगा तो कपड़े कौन धोएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि धोबी जी, कपड़े मैं धो दूंगा परंतु आप हरि बोल बोलो। अब तक धोबी ने महाप्रभु के सामने नहीं देखा था, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि कपड़े मैं धो दूंगा आप हरि बोल बोलो, तो धोबी ने अपना सिर ऊपर किया और ऊपर करके देखा तो आजानु लंबित भुजो, आजानु लंबित महापुरुष जिसके मुख से सुंदर तेज निकल रहा था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नम्रता से अपनी करुणा भरे नेत्र से धोबी के आंख की आंख में आंख डालकर कहने लगे कपड़े मैं धो दूंगा परंतु आप एक बार हरि बोल बोलो। धोबी से रहा नहीं गया और कहा कि बेचारा सन्यासी कह रहा है तो एक बार बोलने में क्या प्रॉब्लम है। धोबी ने एक बार कह दिया हरि बोल, महाप्रभु ने दूसरी बार कहा हरि बोल बोलो। दूसरी बार कहा हरि बोल। महाप्रभु ने तीसरी बार कहा बोलो हरि बोल। तीसरी बार जैसे ही धोबी ने हरि बोल कहा, उस धोबी को महाप्रभु ने अपने गले लगा लिया। गले क्या लगाया, अपनी प्रेम भक्ति का संचार कर दिया। और जैसे ही वह धोबी को गले लगाया, वह धोबी के अंदर कृष्ण प्रेम उमड़ पड़ा और वे नाचने लगा, गाने लगा। आंखों से अजस्र अश्रु धारा निकलने लगी, रोंगटे खड़े होने लगा और बहुत सुंदर नृत्य करते हुए हरे कृष्णा कृष्णा। धोबी के हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हुआ और वह नाचने लगा। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में लिखते हैं कि महाप्रभु उसके नृत्य को देखकर दूर हो गए। लिखते हैं जैसे एक बालक किसी खिलौने में चाबी लगाकर खिलौने को छोड़कर पीछे हो जाता है, पीछे हट जाता है, वैसे महाप्रभु प्रेम भक्ति का संचार करके पीछे आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसका नृत्य देख रहे हैं। वो धोबी तो नाचने लगा और नाचते दो तीन घंटे बीत गए। वे घर पर नहीं पहुंचा तो धोबी की पत्नी टेंशन में आ गई कि ये कभी से गए पतिदेव और घर पर नहीं आए, चलो देखती हूँ क्या हुआ है। वे घर से निकली और आकर देखा तो पतिदेव नाच रहे हैं। कहा अरे बाबा, जीवन में कभी ये हिला नहीं और आज नाच रहा है, जीवन में कभी इसको हिलने को नहीं आता है और ये नाचना कब सीख गया और इतना सुंदर नृत्य कर रहा है। परंतु लगता है कि रो रहा है, हंस रहा है, लगता है कोई भूत इसे स्पर्श कर दिया है। आज तो मैं भूत स्पर्श नहीं किया था, ये तो नंद का, ये तो सच्ची का सूत स्पर्श कर दिया था। तो वे तो चिल्लाने लगी, गांव वाले मेरे पतिदेव को भूत स्पर्श कर लिया है, गांव वाले आओ आओ बचाओ बचाओ। सारे गांव वाले वहां पर एकत्रित हो गए और गांव वाले सोचे कि यहां से रिस्क कौन ले, यदि हम जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा तो भूत। फिर भी एक गांव वाले ने हिम्मत करके वहां पर गया और उस धोबी के दोनों हाथ पकड़ के कहने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। इतना कहते ही धोबी ने उसे अपने गले लगा लिया। तो गले क्या लगाया, महाप्रभु का वह करंट धोबी में और धोबी का करंट उस व्यक्ति में, वो व्यक्ति भी हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब तक एक खिलौना नाच रहा था, अब एक साथ दोनों नाचने लगे। अब गांव वाले में से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, सोचा इसमें भी भूत आ गया। परंतु पत्नी आखिर पत्नी होती है, पत्नी से नहीं रहा गया, उनकी पत्नी धोबी के पास गई, दोनों हाथ पकड़ करने लगी, पतिदेव क्या कर रहे हो तुम। पतिदेव ने पत्नी को भी नहीं छोड़ा, पत्नी को गले लगा लिया, वह करण पत्नी में पास हो गया, पत्नी भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार से महाप्रभु ने पूरे गांव वालों को धीरे धीरे करके पूरे बंगाल में रहने वाले सभी गांवों को भक्त बना दिया। तो महाप्रभु की अनंत असीम लीला है, इसका कोई अंत नहीं है। परंतु फिर भी हम सब गौड़ीय वैष्णवों को चाहिए कि चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत से महाप्रभु की इस लीला का पठन करें, श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब दूर दूर से यहाँ पर यह कथा सुनने के लिए आते हो। और सबसे बड़ा आभारी इष्ट देव प्रभु का हूँ जिन्होंने मुझ पर कृपा करके बंबई से यहाँ पर बुलाया। वास्तव में उनकी बहुत बड़ी कृपा है क्योंकि वे इतना सुंदर आयोजन करते हैं, कथा करने का मौका देते हैं और इसी से ही हमारा मन और बुद्धि, हमारी वाणी भगवान की लीलाओं में लगती है। नहीं तो हम भी इतने आलसी हैं, केवल सोने के अलावा और कुछ जानते नहीं हैं। परंतु प्रभु जी की कृपा है कि वे कुछ बोलने का मौका देते हैं तो कुछ पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो धन्यवाद आप सब भक्तों का, इष्ट देव प्रभु का। आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस दो दिनों में बोलने में और कुछ व्यवहार में कुछ कमी रह गई होगी, कुछ भूल हो गई होगी, कुछ अपराध हो गया होगा, तो आप क्षमा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आप सब की तरह भक्त बन सकूँ और आप लोगों की तरह भक्ति कर सकूँ, भगवान का नाम ले सकूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अंत में यही मैसेज दे रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो हरि नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए केवल भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। सब लोग भगवान के नाम का जप कीजिए, परंतु नाम जप ठीक से तब कर पाएंगे जब हम रेगुलर मंदिर में आएंगे। इष्टदेव प्रभु का बहुत प्रयास है। वास्तव में यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है, यह प्रभुपाद जी का बनाया हुआ एक धाम है। वैसे तो रोज तो हम वृंदावन में नहीं जा सकते हैं। महाप्रभु ने पांच साधन, भक्ति के पांच साधन बताए, निरंतर भगवान के नाम का जप, भागवत श्रवण, साधुओं का संग, अर्च विग्रह की पूजा और धाम वास। धाम में वास करना यह बहुत बड़ा बल है। रोज तो हम वृंदावन मायापुर नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने हम पर कृपा की है कि वही वृंदावन और मायापुर धाम के एक टुकड़े को यहाँ सोलापुर में लाकर रख दिया है। यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं, यह साक्षात धाम है। यहाँ पर आने पर हृदय में भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, नम्रता बढ़ती है। इसलिए रेगुलर प्रतिदिन सुबह मंगला आरती में आकर भागवत प्रवचन सुनना चाहिए, और प्रतिदिन न आ सको तो कम से कम रविवार को और फेस्टिवल के दिन आप सबको आना चाहिए। सभी भक्तों को यहाँ पर लाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। मैं श्री राधा गिरधारी जी से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से, गौर निताय से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ सोलापुर में रहने वाले सभी भक्तों को शक्ति प्रदान करे कि वे स्वयं भक्ति कर सके, और एक दिन पूरे सोलापुर में रहने वाले सभी जनों को भगवान की भक्ति में नचा दे। हरे कृष्णा हरे राम, गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ मिश्र उत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।